उसके बाद कुर्बानी। जो शख्स हज इफराद कर रहा है उसके लिए हज की कुर्बानी मुस्तहब है, अगर कर ले तो बहुत अच्छा है, अगर न करे तो कोई हर्ज नहीं है। और चूंकि हज की कुर्बानी इसके लिए जरूरी नहीं है और मुस्तहब है, इसलिए तरतीब भी इसके लिए जरूरी नहीं है। रमी कर ली तो रमी के बाद फौरन हलक करा सकता है, लेकिन अगर यह भी थोड़ा सब्र कर ले और रमी करे, रमी के बाद कुर्बानी करे और कुर्बानी करने के बाद हलक करे, तो यह सुन्नत है, मुस्तहब है, उसको सवाब ज्यादा मिलेगा। लेकिन जो हज्जे किरान करने वाले हैं और जो हज्जे तमत्तु करने वाले हैं, उनके लिए जरूरी है कि रमी और हलक के दरमियान कुर्बानी करें, और यह कुर्बानी वाजिब है। और अगर किसी के जहन में यह बात है कि यह जो कुर्बानी मैं इस वक्त कर रहा हूं, यह वो कुर्बानी है जो हर साल हम अपने अपने मकाम पर करते हैं, तो हज की कुर्बानी से अभी फारिग नहीं हुआ और इसके लिए हलक कराना जायज नहीं है। यह नियत करना जरूरी होगा कि यह जो कुर्बानी मैं कर रहा हूं ये मेरी हज की कुर्बानी है, हज्जे तमत्तु की कुर्बानी है या हज्जे किरान की कुर्बानी है। इसलिए इन दोनों कुर्बानियों में फर्क को समझने की जरूरत है। किसी कदर तफसील के साथ पहले मैं समझा चुका हूं कि अगर हाजी मीना में जाने से पहले मक्का मुकर्रमा में 15 दिन का कयाम कर चुका है और वह साहिब निसाब है, तो उसके लिए वह हर साल वारी ईद उल अजहा की कुर्बानी भी वाजिब है, और हज तमत्तु और हज किरान कर रहा है तो हज की कुर्बानी भी वाजिब है, उसके जिम्मे दो कुर्बानी है। यह अलग बात है कि हज की कुर्बानी हरम ही में होगी और जो हर साल की कुर्बानी है वो कहीं भी करवा सकता है। तो ये जो कुर्बानी करनी है उसके बारे में ये जहन में रखें कि हज की कुर्बानी है। और इस सिलसिले में एक ये भी बात याद रखे कि हर साल की ईद उल अदहा की कुर्बानी के जो जो शराइत और मसाइल हैं, हज की कुर्बानी के मसाइल भी वही हैं। यानी जानवर इतनी उम्र का हो, जानवर में किसी किस्म का ऐब न हो। इसलिए हाजियों को इस सिलसिले में भी बड़े बूढ़ों से रहनुमाई हासिल करके, उलमा से रहनुमाई हासिल करके, तजर्बा हासिल करके जानवर का इंतखाब करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि कम उम्र का जानवर जबा हो गया, ऐब वाला जानवर जबा हो गया जो शरीयत में मकबूल नहीं है, तो कुर्बानी नहीं होगी, और कुर्बानी नहीं हुई तो अब सर को हलक करना जायज नहीं है। अफजल यह है कि अगर कर सकता है तो कुर्बानी खुद अपने हाथों से करे, और अगर नहीं तो किसी मोतबर आदमी से करवाए और खुद वहां हाजिर रहे। और हालात ऐसे हैं कि किसी और को सौंपना चाहता है और खुद हाजिर नहीं रह सकेगा, तो किसी मोतबर आदमी को, अल्लाह का डर रखने वाले आदमी को सौंपे कि जिसके बारे में यकीन हो कि ये मेरा काम सही करके आएगा। कुर्बानी का वक्त जो है वो भी 10वीं ज़िलहिज्जा की सुबह से, सुबह सादिक से 12वीं ज़िलहिज्जा की मगरिब तक है। 3 दिन में आपका जब जी चाहे कर सकते हैं, लेकिन जहन में यह रखिए कि जब तक कुर्बानी नहीं होगी उस वक्त तक हलक नहीं कर सकेंगे। इसलिए सबसे अच्छा यह है कि रमी तो आपकी हो जाए मगरिब से पहले, या जरूरत अगर है तो मगरिब के बाद, ईशा के बाद, दूसरे दिन सुबह सादिक के बाद फजर की नमाज के बाद कुर्बानी हो जाए, और कुर्बानी के बाद फिर हलक करा लें। हलक के सिलसिले में उमरे के बयान में तफसील के साथ अर्ज कर चुका हूं कि सबसे अफजल हलक है कि पूरे सर के बालों को मुंडवाएं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे हजरात के लिए 3 मरतबा दुआ फरमाई है। और अगर कोई कसर करना चाहता है तो कम से कम 1 इंच बालों को ट्रिम करना पड़ेगा, पूरे सर में से कम से कम क्वार्टर हिस्से का। और अगर किसी ने फकत क्वार्टर हिस्से के बाल को ट्रिम किया और बाकी 3 क्वार्टर को रहने दिया तो यह मकरूह तहरीमी है, गुनाह का काम है, लेकिन एहराम से निकल जाएगा। औरतें اپنے بالوں کی چوٹی کے بالکل اخیر سے تقریباً ایک انچ بالوں کو کاٹے، اپنے محرم سے کٹوائیں، خود کاٹ لیں، کسی اور عورت سے کٹوائیں، لیکن اس بات کا خیال رہے کہ سارے بالوں کو دیکھ کر اندازہ لگائیں کہ کم از کم اس کے سر میں جتنے بال ہیں اس میں سے ایک چوتھائی بال کا ایک انچ کٹنا چاہیے، کوارٹر بالوں کا ایک انچ کٹنا چاہیے۔ حلق یا قصر جیسے ہی ہو گیا، اب حاجی احرام سے نکل گیا اور سوائے میاں بیوی کے تعلقات کے باقی سارے ممنوعات سے فارغ ہو گیا، اور جو چیزیں پہلے جائز تھیں اب دوبارہ جائز ہو گئی۔ میاں بیوی کے جو تعلقات ہیں وہ اس وقت جائز ہوں گے جب یہ طواف زیارت سے فارغ ہو جائے گا۔ یہاں پر ایک مسئلہ عرض کر دوں کہ حلق سے تو ساری چیزیں حلال ہو گئی سوائے میاں بیوی کے تعلقات کے، اور طواف زیارت کرنے سے میاں بیوی کے تعلقات جائز ہو گئے۔ تو کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو جائے کہ اگر رمی کرنے سے پہلے ہم طواف زیارت کر لیں، یا قربانی سے پہلے طواف زیارت کر لیں، یا حلق کرانے سے پہلے ہم طواف زیارت کر لیں تو باقی ساری چیزیں تو ناجائز رہے گی، میاں بیوی کے تعلقات جائز ہو جائیں گے۔ سب چیزوں سے فارغ ہونے کے لیے اور تمام چیزوں کے جائز ہونے کے لیے فقط ایک چیز کی ضرورت ہے، وہ ہے سر کے بالوں کو مڑانا۔ اور میاں بیوی کے تعلقات کے جائز ہونے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے، سر کے بالوں کو مڑانا اور طواف زیارت بھی کرنا۔ اس لیے اگر کسی نے طواف زیارت سر کے بالوں کو مڑانے سے پہلے کر لیا ہے تو اب سر کے بالوں کو مڑانے کا انتظار کرنا پڑے گا، تب جا کر کے میاں بیوی کے تعلقات جائز ہوں گے۔